दिन भर। आज है 23 अगस्त दिन शुक्रवार, मैं हूँ दिव्या आर्य। कश्मीर घाटी के सौरा में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक झड़प, श्रीनगर की बड़ी मस्जिदें बंद। अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा तेजी आएगी।
हम उम्मीद करते हैं, जैसे इंडस्ट्री उम्मीद करते हैं कि बदलाव आएगा, उनका पोजीशन इंप्रूव होगा।
गाजियाबाद के एक गटर ने ली 5 कर्मचारियों की जान।
वो गिर गया हाथ, उसने कोई आवाज भी नहीं निकली उसके मुंह से। ठेकेदार भी अंदर उनको बचाने के लिए गया, लेकिन वो भी उसके अंदर ही गिर गया।
और जानेंगे इंदिरा गांधी को बहन क्यों मानते थे यासिर अराफात।
वो तो जब मिड एयर होते थे, जब पहुंचने वाले होते थे, तभी वो खबर आती थी कि मैं आ रहा हूं, इंदिरा से मिलना है, माय सिस्टर।
होंगी अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नज़दीक सौरा में जुमे की नमाज के बाद आज सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हिंसा शुरू हो गई और इसमें कम से कम 2 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अब तक बीबीसी को घायलों की कुल संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं श्रीनगर में आज शांति रही। इधर फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस की मजबूत दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। अपने भाषण में मोदी ने कश्मीर और अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि हमें एक अस्थायी प्रावधान को हटाने में 70 साल का वक्त लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं की सुनवाई पर सहमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। 3 तलाक बिल को पिछले महीने ही संसद में पास किया गया था। इसके तहत ऐसा करने के जुर्म में दोषी को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ये 3 याचिकाएं 2 संगठनों, जमीयत उलेमाए हिंद संगठन और समस्त केरल जमीयतुल उलेमा संगठन और एक व्यक्ति ने दाखिल की है। दुनिया का पहला तैरता परमाणु स्टेशन आज आर्कटिक में मौजूद रूस के बंदरगाह मर्मास्क से सुदूर पूर्व में मौजूद रूस के चुकोटका प्रांत के लिए रवाना हुआ। 21,000 टन के इस परमाणु संयंत्र का नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। इसे लेकर पर्यावरणविदों में काफी चिंता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस का कहना है कि आंधी तूफान की सूरत में यह संयंत्र दुर्घटना का शिकार हो सकता है और जिसका नतीजा किसी बड़े हादसे के रूप में हो सकता है। बताया जाता है कि इस साल के आखिर में अकादमिक लोमोनोसोव पेवेक शहर पहुंचेगा और वहां पुराने संयंत्र को बदलेगा। संयंत्र के निर्माण और अभियान के उपनिदेशक दिमित्री एलेक्सिनिको पर्यावरणविदों की चिंताओं को खारिज करते हैं। ऊर्जा से भरे इस पूरे टुकड़े का फायदा यह है कि हम इसे देश के उन हिस्सों में आसानी से पहुंचा सकते हैं जहां ऊर्जा की जरूरत है। इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इसके उलट इससे पर्यावरण को फायदा ही होगा क्योंकि इसमें किसी तरह के कोयले का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साथ ही तेल से होने वाले प्रदूषण का खतरा भी नहीं है क्योंकि तेल के इस्तेमाल से होने वाला कचरा एकत्र किया जाएगा, समंदर में कुछ भी फेंका नहीं जाएगा। दिमित्री एलेक्सिनिको के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग लगी हुई है। इसे लेकर पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की नीतियों पर सवाल उठाया है। ग्रीन पीस का कहना है कि उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया और उसके बाद 2 हफ्ते पहले जानबूझकर आग लगाई गई जो अब काबू से बाहर हो गई है। ब्राजील की पूर्व पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा ने कहा है कि जो लोग अमेजन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने उनके प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाया हुआ है। दिक्कत यह है कि सरकार ने अपनी नीतियों को ताक पर रख दिया है। सरकार का पर्यावरण वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के प्रति नाराजगी का भाव है। हमारा देश आर्थिक तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस बीच ऐसी चीजें हो रही हैं। ये आग आपराधिक तौर पर लगाई गई है और लोग उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। ब्राजील की पूर्व पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा के शब्द। इधर फ्रांस और आयरलैंड ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ के साथ होने वाले एक अहम व्यापार समझौते का अनुमोदन तब तक नहीं करेंगे जब तक ब्राजील अमेजन के जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पा लेता। चीन ने कहा है कि करीब 75 अरब मूल्य के 5,000 से अधिक अमरीकी वस्तुओं के आयात पर वो अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। पहले चरण के ये अतिरिक्त शुल्क 5-10% के बीच हो सकते हैं और ये शुल्क अगले महीने की पहली तारीख से लागू हो जाएंगे। दूसरे चरण के अतिरिक्त शुल्क को इस साल दिसंबर में लागू किया जाएगा। चीन का कहना है कि अमरीका ने चीन से आने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिसके उत्तर में उन्होंने अमरीका से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाया है। इस घोषणा के बाद अब इस तरह की अटकलें तेज हो रही हैं कि चीन और अमरीका के बीच व्यापार युद्ध अब और गहरा गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी ठहराने वाले जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस अरशद मलिक को दोषिताचरण सभी ईमानदार जजों के लिए शर्म की वजह है। कोर्ट ने कहा है कि वो उम्मीद करती है लाहौर हाईकोर्ट मलिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर लाइव। मैं हूं दिव्या आर्य। आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज के बाद कश्मीर घाटी के सौरा में एक शांतिप्रिय प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने पैलेट गोलियों और आंसू गैस से दिया। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा वहां मौजूद थे और उन्होंने दो लोगों को घायल होते देखा। कितना बड़ा था यह प्रदर्शन और क्या इसका घाटी के कुछ इलाकों में रातों रात लगाए उन पोस्टर्स से कोई लेना देना था जिनमें लोगों से सड़कों पर प्रदर्शन करने की गुहार लगाई गई थी? ये सारी जानकारी लेने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने आमिर से बात की।
सौरा में हम ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब पहुंचे, जहाँ पे नमाज की गैदरिंग शुरू हो गई थी। लोग गैदर हो रहे थे। वो ऐसी जगह है, वो एक श्राइन है बेसिकली, जहाँ पे औरतें और आदमी दोनों आके नमाज ऑफर करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। तो पहले नमाज के बाद वहाँ पे कुछ नारे लगे, प्रो इंडिपेंडेंस, आज़ादी के रिलेटेड नारे लगे, देन एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लोगों की तादाद सैकड़ों की तादाद में लोग थे। जो लोग जो प्रोटेस्ट पहले पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो जैसे हमने पिछले फ्राइडे को देखा, उस फ्राइडे को भी लोगों ने वहीं की गलियों में कोचों में प्रोटेस्ट निकाल के वो डिस्पोज हुआ था। लेकिन इस बार वाला जो प्रोटेस्ट था वो भी वैसा ही कुछ था। वो प्रोटेस्ट उनकी गलियों में, सौरा की गलियों में, आचार की गलियों में जाते जाते एक जगह पे डिस्पर्स हुआ। लेकिन सडनली एक जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस एक गली से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये ऐसी जगह है, इस जगह को लोगों ने सिक्योर कर रखा है। लोगों ने जितने भी रास्ते इस सौरा आचार में अंदर आते हैं मेन रोड से, लोगों ने वो सारे रास्ते खोद रखे हैं। फिर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा रखे हैं, सो पुलिस की गाड़ी कोई अंदर ना आ पाए। तो फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन रहता है, अगर पुलिस उस जगह पे कब्जा करना चाहती है, उस जगह पे कंट्रोल करना चाहती है, तो पुलिस को बाई फुट ही आना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या हुआ, अभी जो ही ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, सडनली एक गली से पुलिस के कुछ लोग जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से सारी भीड़ उस गली की तरफ भागना शुरू किया। एंड वहाँ पे एक सिग्नल है उन लोगों का, जो ही पुलिस के और यूथ के बीच में क्लैश होने लगते हैं, वो सारे लोग 3 बजाना शुरू करते हैं। सो सारे के सारे जो वहाँ के गाँव वासी हैं, वो सारे सारे लोग बाहर निकलते हैं एंड वो उस क्लैश में हिस्सा लेते हैं। वैसा ही कुछ हमने आज देखा, जो ही वहाँ के यंग नौजवानों ने पुलिस एंड CRPF के साथ लड़ना शुरू किया, पत्थरबाजी शुरू हुई, सडनली पीछे से 3 की आवाज़ें आई और लोग अपने घरों से बाहर निकल के उस क्लैश साइट की तरफ भागने लगे। तो क्लैश जारी थे, यहाँ से प्रदर्शनकारी पत्थर ईंटें वो सब फेंक रहे थे, वहाँ से टियर गैस शेल्स, पैलेट्स और पेपर ग्रेनेड्स भी फेंके जा रहे थे। तो उस सब के दौरान मैंने अपने आंखों से 2 पैलेट विक्टम्स देखे, जो जिनके एक की आंख से खून निकल रहा था, दूसरे के गर्दन से खून निकल रहा था। तो क्लैशेस बहुत ही वायलेंट थे, जो करीबन 4 बजे तक चले, 2 बजे से 4 बजे तक वो क्लैशेस चलते रहे। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट नंबर इंजरीज की क्या है।
और आप भी वहां पर थे, आपको भी कोई चोट तो नहीं आई? आमिर, आप और नेहा आपके साथ जो फिल्म कर रही हैं, आप लोग ठीक है?
तो हम जब फिल्म कर रहे थे तो सबसे बड़ा चैलेंज इस सब में ये रहता है कि हम प्रदर्शनकारियों की तरफ से शूट कर रहे थे। हम फोर्सेस की साइड से पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, क्योंकि हम पहले जब भी शूट करते थे, फिल्म करते थे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड से रह के शूट करते थे, क्योंकि वो सेफ जोन माना जाता है। बट इस बार जब से आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ है, तब से जर्नलिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड से शूट करने नहीं दिया जाता है, तो किसी भी जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता शूट करने के लिए। तो इस बार क्या हुआ, सारे के सारे जर्नलिस्ट जो ये प्रोटेस्ट इस बार फिल्म कर रहे थे, सारे जर्नलिस्ट प्रोटेस्टर्स की साइड से फिल्म कर रहे थे, जिसका चैलेंज हमारे लिए ये रहता है वहाँ से सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो कुछ भी फायर किया जाता है, चाहे वो पैलेट हो, टीयर गैस हो या पेपर ग्रेनेड हो, उसका इम्पैक्ट जर्नलिस्ट पे भी होता है, जो हम पे हुआ, क्योंकि पेपर गैस इतना 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 बुरा एक्सपीरियंस आपको देता है कि आप खांसते ही रहते हो, लेकिन लोग हमारे लिए कुछ नमक और पानी का बंदोबस्त करें कर लिए जिसकी वजह से हम थोड़ा हमारे उसमें राहत मिला।
और आज के जो प्रदर्शन थे, क्या वो जो कॉल के पोस्टर्स की कल बात हुई थी उस वजह से ज़्यादा बड़े थे, या इनका जो पोस्टर्स लगे जो माना जा रहा है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की तरफ से लगे थे उससे कोई लेना देना नहीं है?
सोहरा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, सोहरा में इन पोस्टर्स का जो हुर्रियत की तरफ से माना जा रहा है, हुर्रियत की तरफ से वो पोस्टर्स निकाले गए थे, उन पोस्टर्स का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि सोहरा में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रहता है कि वहाँ फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद ये होना ही होना है, क्योंकि वो अब सेंट्रल पॉइंट उन सारे प्रदर्शनों का सेंट्रल पॉइंट बन चुका है। अब भले ही वो पोस्टर्स होते या ना होते, बट इतना है कि इन पोस्टर्स की वजह से एक चीज़ हुई कि लोगों के दिमाग में ये था कि जुम्मे की नमाज के बाद ये होना है, तो लोग खुद उस साइट के तरफ जो श्राइन है उस श्राइन की तरफ सब लोग खुद चल के आ रहे थे, क्योंकि कोई प्रोटेस्ट होने वाला था। और यहाँ पे और एक अफवाह भी थी कि प्रोटेस्टर्स को यूएन की तरफ जाने की कॉल दी गई है, तो उसमें उसके बरक्स हमने जो देखा, यूएन के आसपास सारे रोड्स को बंद किया गया था, बैरिकेड्स थे, सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी बहुत बड़े नंबर्स में था।
ये थे आमिर पीरजादा। सरकार ने अब तक इस प्रदर्शन या इस पर जुड़ी जो लोग घायल हुए हैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार की तरफ से रोज़ एक प्रेस वार्ता होती है श्रीनगर में, ये कल भी नहीं हुई और आज भी नहीं हुई है। अगर कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो हम कार्यक्रम में आगे उसे ज़रूर शामिल करेंगे। श्रीनगर की सभी बड़ी मस्जिदें राज्य से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद से आज यानी लगातार तीसरे शुक्रवार भी बंद रही। जुमे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर्स की सुविधा भी नहीं दी गई। डाउनटाउन और अन्य इलाकों का दौरा कर बीबीसी उर्दू संवाददाता रियाज मसरूर ने ये ब्यौरा भेजा है।
कर्फ्यू, कदगनों, पाबंदियों और बंदिशों की वजह से गुज़श्ता 3 हफ्तों से कश्मीर में आम जिंदगी मौतल है, लेकिन इस दौरान में कई रोज तक बंदिशों में नरमी किए जाने के बाद आज जुमे के रोज बंदिशों में सख्ती की गई। हालांकि ये तीसरा मुसलसल जुमा है जब भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर की बड़ी मसाजिद और खानकाहों में जुमे का इज्तिमा नहीं हुआ। ये कश्मीर की मरकज़ी खानकाह है, दरगाह हज़रत बल है, जहाँ पे हज़ारों लोग हर जुमे को नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ मकामी लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई और इस दौरान लाउडस्पीकर ऑन करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। हमने जामा मस्जिद, तारीखी जामा मस्जिद जो नवहटा में है, वहाँ भी बात करना चाहिए वहाँ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने शूट करने की इजाज़त नहीं दी। जितनी भी इतलात मौसूल होती हैं, क्योंकि मवासलाती निज़ाम ठप है, जो इतलात मौसूल होती हैं कि पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा में बड़ी मसाजिद में बड़े जुमे के इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी गई। इसकी वजह हुकूमत ने ये बताई कि एक दो रोज़ से ये अफवाहें फैल रही थी, कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे कि लोगों से अलहदगी पसंद क़यादत ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहदा के फौजी मुबसरीन के दफ्तर की तरफ एहतजाजी मार्च करें, इसलिए पाबंदियों में सख्ती की गई और बताया ये जाता है इंतज़ामिया की तरफ से कि कल से बंदिशों में फिर से नरमी की जाएगी।
ये थे रियाज मसरूर। 15 अगस्त से लगातार भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर की जा रही गोलीबारी में अब तक 3 भारतीय जवान मारे गए हैं और 4 अन्य जख्मी हुए हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में हुई गोलीबारी में 1 नागरिक की मौत हुई और 1 बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। नियंत्रण रेखा पर कैसे हालात हैं इस पर सुनिए हमारे सहयोगी मोहित कंधारी की जम्मू से ये रिपोर्ट।
पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय और पाकिस्तान सेना के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस दौरान हुई गोलीबारी की घटनाओं में अभी तक 3 भारतीय सैनिक और पुंछ जिले के एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई है। रक्षा मंत्रालय के जम्मू स्थित प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार सवेरे नौशहरा सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। उनके मुताबिक पाकिस्तान सेना ने भारत की अग्रिम चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान भारतीय सेना का एक जवान मारा गया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जवान की पहचान वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के रहने वाले नायक राजीव थापा के रूप में हुई है। नियंत्रण रेखा से सटे रिहायशी इलाकों में भी लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। राजौरी जिला के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज ने बीबीसी को बताया कि नियंत्रण रेखा से सटे रिहायशी इलाकों से दूर उन्होंने सुरक्षित स्थान चिन्हित किए हुए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर गाँव वासियों को रखने की व्यवस्था की गई है।
जहां एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो एक तो हमने सेफ शेल्टर आइडेंटिफाई किए हैं जो एरिया शेलिंग से दूर हैं, शेलिंग वाले जो इलाके हैं वहां से दूर है, उनको वहां हमने सेफ शेल्टर आइडेंटिफाई किए हैं, तो वहां जरूरत नहीं पड़ी किसी को शिफ्ट करने की। सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि केंद्र सरकार ने बॉर्डर बंकर्स का प्रोजेक्ट अप्रूव किया हुआ है और उसमें तकरीबन 800 के करीब बंकर्स हमारे तैयार हो चुके हैं। 3000 बंकर्स जो है बाकी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनको विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से बॉर्डर के नजदीक रहने वाले जो लोग हैं, जिनको 1947 से लेकर आज तक फायरिंग का सामना करना पड़ा और जिनके पास जिनको सबसे बड़ा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अपनी लाइफ का था और एक हमेशा गोलियों के बौछार के बीच में जिनकी गुजारी है उन लोगों ने, तो बॉर्डर बंकर्स का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से इन लोगों को डेफिनेटली एक सेफ शेल्टर अपने घर के आंगन में ही मुहैया किया जाए।
नियंत्रण रेखा पे नाजुक हालात को देखते हुए भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर शुक्रवार को पुंछ और अखनूर सेक्टर का भी दौरा किया। जम्मू में रक्षा विभाग के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने शुक्रवार को पुंछ व अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। 20 अगस्त को पुंछ जिले के महेंडर में मनकोट कृष्णा घाटी और केरनी सेक्टर में भी गोलीबारी में एक जवान मारा गया था। 17 अगस्त को नौशहरा सेक्टर में देहरादून निवासी लांस नायक संदीप थापा की मौत हो गई थी। मोहित कंधारी, बीबीसी जम्मू।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस वार्ता कर ये कहा है कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये जरूर है कि अमरीका चीन व्यापार युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन की वजह से वैश्विक व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई हुई है। ये जानना जरूरी है कि इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने अर्थव्यवस्था की धीमी होती रफ्तार के कई संकेतों की बात की थी और दिन भर इस पर विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आती रहीं, जिसके बाद ही वित्त मंत्री ने ये प्रेस वार्ता की। इस सब पर मेरे सहयोगी सलमान रावी नजर रखे हुए थे और अब स्टूडियो में मौजूद हैं। सलमान, बताएं क्या कहा वित्त मंत्री ने?
देखिए, ये बहुत ही तैयारी के साथ निर्मला सीतारमण पहुंची आज जो नेशनल मीडिया सेंटर है वहां पर, और पूरा अमला यानी कि एक तरह से पूरा वित्त मंत्रालय उनके साथ वहां मौजूद था। हर विभाग के सेक्रेटरी वहां मौजूद थे, वित्त सचिव भी थे साथ में। और जैसा आपने खुद बताया कि आलोचनाएं हो रही थी, सुबह में ही कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो ये जो धीमी अर्थव्यवस्था है इसको लेकर उन्होंने आलोचना की थी सरकार की, और उसका जवाब भी समझिए एक तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही दिया गया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पे पलटवार करते हुए कहा कि
उनके जमाने में करप्शन और इकोनॉमिक स्लोडाउन और इन्फ्लेशन इतना आसमान तक पहुंचना, ये सब उनका देन है। आज इस सरकार ने रिफॉर्म्स के द्वारा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और 2014 से इन्फ्लेशन को एकदम नियंत्रण में रखना, ये सब हमारे देन है इकोनॉमी के लिए। और हम
तो अगर आप ये पूछें कि कैरी अवे पॉइंट्स क्या है, यानी कि इससे क्या निचोड़ है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बहुत लंबी चली, और पहली बार ऐसा है कि नॉर्थ ब्लॉक में तो उन्होंने पत्रकारों को घुसने से मना कर रखा था, लेकिन आज पत्रकारों के साथ खूब सवाल जवाब का सेशन चला। इसमें यह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि ये जो स्लो डाउन है, जो धीमी व्यवस्था है, ये इसलिए है क्योंकि राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा था कि पैसा जो है वो फ्लोट नहीं कर रहा है मार्केट में, और वो तो उसको जो है देखते हुए एक अहम फैसला लिया है उनके मंत्रालय ने, जो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज जो है उसको वापस ले लिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है वो आज का ये रहा। और साथ में वो जो कह रही थी कि ये जो आज ये जो डिसीशंस लिए गए ये इंडस्ट्री की मांग पर लिए गए।
हमने जो आज अनाउंस किया है स्टेप्स, ये इंडस्ट्री के मांग से किए हैं। ये नहीं है कि हम नॉर्थ ब्लॉक में बैठे और कुछ अनाउंस नहीं कर रहे। अनाउंसमेंट जो भी हुआ आज डिमांड सेक्टर से आया है, उसके लिए हम हमारी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिससे हम
तो ये समझिए कि मुख्य तौर पर वो ये कह रही थी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 70,000 करोड़ के बेल आउट का पैकेज जो है उसको मंजूरी दी गई, बैंक के रेपो रेट की कटौती का फ़ायदा ग्राहकों को देने की बात कही गई और लोन सेटलमेंट की जो शर्तें हैं उनको आसान करने की बात की गई, साथ साथ जो जो छोटी इकाइयाँ हैं MSME जिसे कहते हैं उनका जो GST रिफंड है उसमें भी सहूलतें देने की बात की गई, और ये दो बार और आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगी अगले सप्ताह।
जाहिर है और इन चीज़ों का असर धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा कि इससे अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार बेहतर होती है या नहीं। शुक्रिया सलमान ये सारी जानकारी के लिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने रूस, ईरान और तुर्की से भी भूमिका निभाने को कहा है। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं, यही जानने के लिए मेरे साथी वात्सल्य राय ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके राकेश सूद से बात की।
अमरीका वहां से निकलने के लिए तैयार है और ये भी जाहिर है कि अभी इस समय अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण तो नहीं है, और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भारत को वहां पर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए कुछ अजीब सी बात है, क्योंकि अमरीका वहां 18 साल से है और जिनको अमरीका पहले टेररिस्ट कहता था यानी तालिबान, अब उन्हीं के साथ वो नेगोशिएशन में मौजूद है, और ये जानते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान के जिस तरह के संबंध हैं, हमारी मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर एक तरह से बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन खड़ी कर देगी।
भारत के लिए निश्चित तौर पर ये एक पेचीदा स्थिति होगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ कुछ अंतराल के बाद लगातार इस तरह की बात की जाती है।
इसके अंदर ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक तरह से जो, क्योंकि वो शायद वहाँ की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए वो इस तरह से बात कर रहे हैं, पर असलियत यह है कि इस्लामिक स्टेट की पैदाइश जो थी, जो इराक में हुई, वो उसके पीछे अमेरिका का जो इराक के अंदर जो दखल अंदाजी थी 2003 की, वो सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ पे इस्लामिक स्टेट, ये अबू अल बगदादी जो था उसने अपने आप को वहां पे कैलिफेट क्रिएट किया। और उसी तरह जैसे कि 1980s के अंदर जब अमेरिका ने CIA ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो वहीं से अलकायदा की पैदाइश हुई। एक वो कहावत है कि अगर आपने गंद मचाया है तो अब स्वयं उसको खुद ही साफ करना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहावत से वाकिफ नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका 7,000 मील दूर है, उन्होंने याद दिलाया कि आसपास के जो देश हैं उन पर असर ज्यादा है, तो इसका ये क्या कोई दबाव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बात करके?
दबाव नहीं, वो केवल देखिए अमेरिका वहां से उन्होंने कह दिया था, एक तरह से कुछ हिंट भी दिया था कि ये लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स है तालिबान के साथ जो इसमें चल रहा है, इस महीने के अंत तक चाहते हैं कि कोई ना कोई तालिबान के साथ समझौता हो जाए। अगले साल प्रेसिडेंट ट्रंप की री इलेक्शन है, वो चाहते हैं कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू तक वो कह पाए कि देखिए हमने, मैंने वायदा किया था और मैं वहां से अपने ट्रूप्स वापस ले आया हूँ। जैसे ही उनके ट्रूप्स विड्रॉ होते हैं और तुरंत वहां पे स्थिति बिगड़ जाती है, तो वो तो फिर एक तरह से उसकी ऑप्टिक्स बहुत ही खराब साबित होगी। 2010 में अमेरिका जो था वो इराक से निकल आया था, 2014 में दोबारा जाना पड़ा, उन्होंने स्पेशल फोर्सेज भेजे सीरिया में इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए।
भारत की अफगानिस्तान में एक बड़ी भूमिका भारत वहां निभा रहा है, अफगानिस्तान सरकार को कई तरीके से भारत मदद भी कर रहा है, लेकिन जो बातचीत चल रही है तालिबान के साथ खासतौर पर, उसमें भारत का कोई बड़ी भूमिका भारत की नहीं है, तो इस तरह का जो सजेशन आया, अब इसके बाद आप भारत का अगला कदम किस तरह का देखते हैं?
देखिए हमको अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने से तो हम वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, ये पहले भी शुरू में भी ऐसा कुछ इशारा किया था प्रेसिडेंट बुश ने, पर हमने उस समय भी मना कर दिया था इसलिए कि इंडियन आर्मी नॉर्मली किसी फॉरेन कमांड एंड कंट्रोल के अंडर काम नहीं करती है। हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का अलायंस पार्टनर या नेटो मेंबर नहीं है। अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो केवल यूनाइटेड नेशंस जो पीस कीपिंग होता है, ब्लू हेलमेट जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जाते हैं, और ये जाहिर है कि हमारी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान को उकसाएगी, एक तरह से प्रोवोक करेगी, और उससे हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बिगड़ेगी।
अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके राकेश सूद से बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
बीबीसी इंडिया बोल।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर सीबीआई की कार्रवाई, कांग्रेस का आरोप प्रतिशोध के एजेंडे पर चल रही है मोदी सरकार। सीबीआई की दलील, मामला है गंभीर इसीलिए हिरासत जरूरी। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 24 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब एक खबर जो कल की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल 5 मजदूरों की सीवर में काम करते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 प्राथमिक रिपोर्ट आज दर्ज की हैं। इसमें एक मृतक के परिजन की ओर से और दूसरी जल निगम की तरफ से कराई गई है और एक व्यक्ति को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। पूरी रिपोर्ट लेने के लिए ग्राउंड पर गए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे और ये ब्यौरा भेजा।
हम इस वक्त गाजियाबाद के नंदग्राम के कृष्णकुंज इलाके में हैं, जहां पर 5 मजदूरों की कल यानी गुरुवार को सीवर लाइन में घुटकर मृत्यु हो गई। सभी का ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है और सभी यहां पर अकेले रहते थे। जिस सीवर लाइन में मौत हुई वो मुझे दिख रहा है, यहां पर नीचे पानी दिख रहा है और नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ। यहाँ पर राजबीर सिंह है जिनकी दुकान इस सीवर के जस्ट सामने थी और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा। करीब दोपहर 2 बजे ये घटना हुई।
ये गड्ढे का काम तो उन्होंने कल ही शुरू कराया, कल सुबह आके 9-10 बजे आके जेसीबी से खुदवाया है, खुदवा के और उसमें जो उन्होंने हथौड़े से और छेनी से उसमें मतलब छेद कराया मेन लाइन में और ये पाइप डाला है। इस पाइप को डालने के बाद बाहर से मसाला लगा दिया उन्होंने, सीमेंट रोड़ी जो भी लगाना था। अंदर लगाने के लिए एक आदमी को भेजा, जब उस आदमी को मसाला लगाने के लिए भेजा था वो हमने परात हटा दिया यहाँ से, तो वो लगाने लगा तो जैसे नीचे झुककर लगा रहा है तो उसको गैस चढ़ी, गैस चढ़ते ही वो गिर गया हाथ पर, मतलब उसने कोई आवाज़ भी नहीं निकली उसके मुँह से। उनका ठेकेदार साथ में ही था, उसने देखा तो दूसरे आदमी को भेज दिया, अब इसको निकालो, वो भी दूसरा फिर गिरा। इसी तरह करते करते उनके 4 आदमी गिर गए। लास्ट में जब ठेकेदार चिल्लाया अब रस्सी लाओ ये करो, तो ठेकेदार भी अंदर उनको बचाने के लिए गया लेकिन वो भी उसके अंदर ही गिर गया।
गाजियाबाद में शमशान घाट से थोड़ा आगे है पोस्टमार्टम हाउस, जहां पर जो मृतक हैं उनके शव लाए गए हैं। सभी परिवार के लोग तो यहां पर नहीं इकट्ठा हो पाए हैं लेकिन थोड़े रिश्तेदार जो इकट्ठा हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
ये विजय मेरा भतीजा लगता है जी। इनके परिवार में 3 लड़का है, 1 लड़की है, 1 घरवाली है, 1 माँ है, 1 बाप है। कल भी बात हुआ था फ़ोन से, परसों बात हुआ था तो बोला हम आएंगे 1-2 दिन घूमने के लिए, ठीक है आ जाना। उसके सुबह ही गुजर गया ये 2 बजे दिन में करीब।
सुरक्षा के कोई उपकरण इस्तेमाल करते थे कैसे?
सुरक्षा के लिए ये तो उसको करना चाहिए जी, कंपनी वाले को करना चाहिए। मजदूर तो पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में कुछ भी कर लेता है।
संतोष कुमार जी, ओरेल आपके क्या लगते थे?
वो हमारे चाचा के लड़के हैं, मतलब गांव में उससे 1 महीने पहले मुलाकात हुई थी और उसने कहा कि मैं उससे भी मना किया कि मत जाओ इस लैंड में, फिर भी उसने बात काट कर इस लैंड में आ गए।
आपने बताया कि आपने उनको मना किया था पहले काम करने के लिए, क्यों मना किया था?
मैं मना इसीलिए किया था कि आज से मतलब करीबन कई साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की, राजस्थान डिडवाना गांव में 2 लड़के मतलब इसी तरह मिट्टी में दब के मर गए थे, तो इसीलिए हमको डर लग रहा था कि हम भी करते थे उसी लैंड में काम और मना भी किए कि उस लैंड में मत जाओ आप।
हम इस वक्त गाजियाबाद के SSP सुधीर कुमार सिंह जी के दफ्तर में हैं। सुधीर कुमार सिंह जी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में पुलिस की तरफ से?
इसमें EMS इंफ्रोकॉन कंपनी है जो जल निगम के बिहाफ पे ये सीवर लाइन बिछाने का कार्य कर रही है, उसी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में जब कार्रवाई हुई तो 2 FIR इसमें दर्ज की गई, एक तो जो मृतक थे उनके परिजनों द्वारा FIR दर्ज कराई गई और दूसरी FIR जल निगम के द्वारा दर्ज कराई गई जिसमें कंपनी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें बेसिकली 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, एक तो रामवीर जो उसके कंपनी के मालिक हैं, दूसरे उनके जो एक साइट मैनेजर है मोनू और एक और जो प्रवीण नाम के एक और जो उनके अधिकारी, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और इसमें अभी तक जो अपडेट है उसमें मोनू को हमने पूछताछ के लिए ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद कुछ टीम।
ये थी विनीत खरे की रिपोर्ट, सीवर में काम करने वाले लोगों की मौत से जुड़ी एक और बुरी खबर।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं दिन भर, रेडियो से दूर मत जाइए क्योंकि ये विशेष एक घंटे का कार्यक्रम है। मैं हूँ दिव्या आर्य। आगे बात करेंगे ब्रिटेन में फोर्स्ड मैरिज यानी जबरन शादी के बढ़ते मामलों पर विशेष पड़ताल, विवेचना सुनेंगे, 90वीं जयंती है यासिर अराफात की, साथ ही चर्चा होगी सोशल मीडिया पर क्या है चर्चाएं। पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नज़दीक सौरा में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हिंसा शुरू हो गई। मौके पर मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने पेलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फ्रांस के दो दिन के दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने भाषण में मोदी ने कश्मीर और अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि हमें एक अस्थाई प्रावधान को हटाने में 70 साल का वक्त लगा। हांगकांग में आज हजारों की संख्या में गणतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। कई प्रदर्शनकारी अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क लगाए हुए थे और उन्होंने शाम के अंधेरे में अपने मोबाइल फोन के टॉर्च जलाकर विरोध जताया। हांगकांग में बीते दो महीनों से अधिक वक्त से विवादित प्रत्यर्पण बिल का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी इस बिल को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस और आयरलैंड समेत यूरोपीय देशों के कई नेताओं ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ के साथ होने वाले एक अहम व्यापार समझौते का अनुमोदन तब तक नहीं करेंगे जब तक ब्राजील अमेजन के जंगलों में लगी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेता। फ्रांस का कहना है कि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को जलवायु परिवर्तन पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। इधर बोल्सोनारो ने कहा है कि अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए वो सेना भेजने वाले हैं। दुनिया का पहला तैरता परमाणु स्टेशन आज आर्कटिक में मौजूद रूस के बंदरगाह मरमास्क से सुदूर पूर्व में मौजूद रूस के चुकोटका प्रांत के लिए रवाना हुआ। 21,000 टन के इस परमाणु संयंत्र का नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। इसे लेकर पर्यावरणविदों में काफी चिंता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस का कहना है कि आंधी तूफान की सूरत में यह संयंत्र दुर्घटना का शिकार हो सकता है जिसका नतीजा किसी बड़े हादसे के रूप में हो सकता है और इससे इंसान के साथ साथ आर्कटिक भी प्रभावित हो सकता है। चीन ने कहा है कि करीब 75 अरब मूल्य के 5,000 से अधिक अमरीकी वस्तुओं के आयात पर वो अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। पहले चरण के ये अतिरिक्त शुल्क 5-10% के बीच हो सकते हैं और ये शुल्क अगले महीने की पहली तारीख से लागू हो जाएंगे। दूसरे चरण के अतिरिक्त शुल्क को इस साल दिसंबर में लागू किया जाएगा। चीन का कहना है कि अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला अमेरिका के उस कदम के बाद किया है जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वो चीन से होने वाले आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स ने चीन सरकार की मदद से चलाए जा रहे भाषा कार्यक्रम को बंद करने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर। जबरन शादी और इज्जत के नाम पर प्रताड़ना से जूझ रही महिलाओं और बच्चों के साथ ब्रिटेन में काम कर रही एक संस्था ने दावा किया है कि ऐसी हिंसा बढ़ रही है। उनके मुताबिक मदद के लिए लंदन, लीड्स और बर्मिंघम से उन्हें सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं। ब्रितानी कानून के तहत किसी से भी जबरन शादी करवाना अपराध है। लंदन में बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल ने वहां रह रही दक्षिण एशियाई समुदाय की कुछ पीड़ित महिलाओं से मिलकर हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है।
वो सब एक डरावनी फिल्म या बुरे सपने की तरह था जो आप बार बार देख रहे थे और जिसका कोई अंत ही नहीं था, बल्कि वो और भयानक होता जा रहा था।
रूबी जब 15 साल की थी, गर्मियों की छुट्टियों में उनका परिवार उन्हें बांग्लादेश लेकर चला गया। वहाँ उनसे दुगनी उम्र के एक शख्स से उनकी शादी कर दी गई।
मुझे साड़ी और गहने पहनाकर तैयार किया गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सजा धजा कर बेचा जा रहा हो। मेरा मन कर रहा था कि कहीं से कूद कर या कैसे भी बस अपनी जान दे दूं।
16 साल की उम्र में रूबी एक बच्ची की माँ बन गई। उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने जबरदस्ती की शादी और हिंसा करने वाले पति से छुटकारा पाने के लिए घर छोड़ दिया.
Saying she should be ashamed, saying she has to marry him.
साल 2014 में ब्रिटेन ने फोर्स मैरिज यानी जबरदस्ती की शादी को अपराध घोषित कर दिया था. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया.
Every year this day comes, a girl feels like hiding away.
रूबी की तरह भारतीय पृष्ठभूमि से आने वाली 26 साल की निशा भी फोर्स मैरिज से बचने के लिए घर छोड़कर चली गई. एक अजनबी शख्स से शादी का उन पर दबाव डाला जा रहा था.
Growing up, I was quite a dark child.
मैं बचपन से अपने भाई बहनों की तुलना में ज्यादा सांवली थी, इसलिए मुझे कहा जाता था कि मैं परिवार के लिए अपशकुन हूँ. धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तब मेरी बहुत पिटाई होती थी, मुझसे घर के काम कराए जाते थे. मुझे याद है जब मैं केवल 6 या 7 साल की थी तब रोटी गोल नहीं बना पाने के कारण मुझे भाई बहनों के सामने कपड़े उतार कर मारा जाता था.
Siblings, they didn't ask me if I want to get married.
उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं, या आगे क्या करना चाहती हूँ. धीरे धीरे मैं समझने लगी थी कि ये सब केवल परिवार की इज्जत और समाज के डर के कारण किया जा रहा है.
दुख की बात ये है कि ये सिर्फ रूबी और निशा की कहानी नहीं है. यॉर्कशायर की एक चैरिटी संस्था कार्मा निर्वाणा का कहना है कि उनके हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल करने वाले पीड़ितों की संख्या हर साल बढ़ रही है. रूबी और निशा अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी उनके परिवारों ने उनको अपनाया नहीं है.
मैंने अपने पेरेंट्स को फोन लगाया लेकिन उनके तरफ से कोई कॉल नहीं आया. दरअसल जब मैंने घर छोड़ा था तब उन्होंने मुझसे कह दिया था कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ.
I think people forget.
मेरे ख्याल से लोग भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया. आप परिवार के लिए कलंक बन जाते हैं, लेकिन एक तरह से आप दूसरों के लिए आज़ादी की चाहत का उदाहरण भी बन जाते हैं. काश मुझे थोड़ी और सराहना मिलती.
I wish I could be appreciated for that. A little bit
more. ये थी गगन सबरवाल. और अब सोशल मीडिया में क्या रहा चर्चा में, ये जानने के लिए मैंने बात की सिंधुवासिनी त्रिपाठी से.
हैशटैग हैप्पी जन्माष्टमी, हैशटैग जन्माष्टमी, हैशटैग लॉर्ड कृष्णा और हैशटैग श्री कृष्णा, ये ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स हैं. और ट्विटर ही नहीं, गूगल और फेसबुक के भी हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी है.
आपको भी हैप्पी जन्माष्टमी.
हैप्पी जन्माष्टमी. और सोशल मीडिया पर लोग राधा कृष्ण बने छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. वो फिल्मी गाने पोस्ट कर रहे हैं जो राधा कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जैसे मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे
और राधा कैसे न जले,
इस तरीके के गाने. इसके अलावा कृष्ण के जीवन दर्शन को भी जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते हैं. जैसे कि रोहित शांडिल्य जो फेसबुक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म के जिस निरपेक्ष और उदार स्वरूप को हम जानते हैं, श्री कृष्ण उसके देवता हैं. श्री कृष्ण जिन्होंने बताया कि ये दुनिया ब्लैक एंड वाइट से इतर ग्रे है, इस दुनिया के किरदार ग्रे हैं और उसके फैसले भी ग्रे हो सकते हैं.
श्री कृष्ण ने कभी इसे ब्लैक वाइट और ग्रे नहीं सोचा होगा, पर इनकी सोच बहुत ही रोचक है.
और लेकिन दिव्या, इसका एक दूसरा भी पक्ष है. खासकर महिलाएं थोड़े अलग तरीके से, थोड़े आलोचनात्मक तरीके से देख रही हैं. जैसे कि फेसबुक पर प्योली स्वातिजा अपनी एक दोस्त के हवाले से लिखती हैं, पहले के कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराते थे और आजकल के कृष्ण इनबॉक्स में कहते हैं सेंड मी न्यूड्स.
ये बिल्कुल एक विवादास्पद बयान है, लेकिन कई लड़कियां मानती हैं कि कृष्ण और गोपियों के खेल को सिर्फ खेल की तरह ना देखा जाए, बल्कि ये एक तरह का यौन उत्पीड़न था और इसीलिए वो इस तरह का एक पैरेलल, जिसे कह रहे हैं आज के ज़माने से जोड़ के कह रही हैं कि अब ज़माना बदल गया है और सोशल मीडिया में लोग इनबॉक्स करके, जो कुछ लड़कों को लगता हो शायद लड़कियों की तारीफ है, पर लड़कियों के नज़रिए से वो उनका यौन उत्पीड़न है. धर्म की ही बात पे अगर टिके रहें तो एक और ये हैशटैग बॉयकॉट मैकडोनल्ड्स का भी इस धर्म से ही शायद कुछ रिश्ता है और ये ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में बताइए.
बायकॉट मैकडोनल्ड्स इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि एक ट्विटर यूजर ने मैकडोनल्ड्स इंडिया को ट्वीट करके पूछा कि क्या आपके रेस्टोरेंट्स जो इंडिया में हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं। तो मैकडोनल्ड में जवाब ने कहा कि हाँ, हमारे सारे रेस्टोरेंट्स हलाल सर्टिफाइड हैं और वहाँ पर हलाल मीट ही मिलता है।
तो इस पर बॉयकॉट की बात क्यों आई?
बायकॉट की बात इसलिए आई क्योंकि गैर मुस्लिम तबके के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद जो शायद हलाल मीट खाने में सहज नहीं है। जैसे कि समीर यादव ने ट्वीट किया है कि मैकडोनल्ड्स हलाल हमारे लिए हराम है, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके किस रेस्टोरेंट में झटका मीट मिलता है। उसी तरीके से अभिजीत भी लिखते हैं कि मैकडोनल्ड्स, आपके जवाब से तो लगता है कि आपका खाना भारत के गैर मुस्लिम नहीं खा सकते।
और क्या इस पर मैकडोनल्ड्स ने कोई जवाब दिया?
विवाद के बाद तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कंपनी की ओर से। और सोशल मीडिया से जुड़ी एक और अहम खबर ये है कि गूगल ने यूट्यूब के 210 चैनल बंद कर दिए हैं। ये सभी चैनल वो हैं जो हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ वीडियो पोस्ट कर रहे थे। और गूगल का कहना है कि ये चैनल प्रदर्शनों के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे थे।
तो या क्या गूगल ने बताया है इन चैनलों के पीछे कौन है? क्योंकि ये प्रदर्शन तो चीनी सरकार और हांगकांग की जो नेता हैं कैरी लैम उनके खिलाफ हैं।
नहीं, गूगल से जब ये सवाल पूछा गया तो गूगल ने ऐसा कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। और इसी हफ्ते सोमवार को फेसबुक ने भी लगभग ऐसे ही 2 लाख अकाउंट बंद किए थे जो हांगकांग के प्रदर्शनों के बारे में गलत जानकारी फैला रहे थे।
ये थी सिंधुवासिनी त्रिपाठी। और अब वक्त विवेचना का। जब भी कभी फलस्तीन के संघर्ष की बात होती है तो वहां के नेता के तौर पर आज भी एक ही व्यक्ति की छवि सामने उभरती है, वो है यासिर अराफात। शुरू में वो इसराइल के अस्तित्व के सख्त खिलाफ थे लेकिन बाद में उन्होंने इसराइल के साथ ओस्लो समझौता किया जिसके लिए उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। यासिर अराफात की 90वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल।
इसराइल के एक नामी वकील योएल सिंगर का मानना है कि उन्होंने यासिर अराफात से अच्छा वार्ताकार नहीं देखा। वो एक हॉलीवुड फिल्म के जुआरी की तरह थे जिसके पास खराब पत्ते होते हुए भी वो हमेशा लोगों को झांसा देता रहता था कि आखिर में जीत उसकी ही होगी। जब सब समझते थे कि बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है और अब बस समझौता होने भर की देर है, अराफात अचानक अपनी मांगे बढ़ा देते थे। अगर हस्ताक्षर समारोह कल है तो अराफात आज अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रियायत लेने की फिराक में रहते थे। 13 नवंबर 1974 का दिन यासिर अराफात के लिए खास था। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उस दिन काफी कड़ी सुरक्षा थी। फलस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख यासिर अराफात को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्लेनरी सत्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहली बार किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करने वाले शख्स को यह सम्मान मिलने वाला था। उस जमाने में अराफात के करीबी और बाद में फलस्तीनी प्रशासन के पहले विदेश मंत्री नाबिल शात को वो दिन अभी तक याद है।
He was very composed and he accepted what he never accepted before or after, namely to shave his beard completely and totally.
अराफात ने पहली बार वो चीज मानी थी जो पहले उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी पूरी तरह से साफ करा दी थी और नया सूट भी पहना था। उनके खाकी सूट पर बहुत ढंग से प्रेस की गई थी और वो बिल्कुल चमक रहे थे।
उस दिन अराफात न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से सीधे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे थे। ठीक उसी समय कारों का एक काफिला वाल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल की तरफ रवाना हुआ था ताकि अराफात के विरोधियों को यह आभास दिया जाए कि वो कार के जरिए अपने होटल जा रहे हैं। उस दिन अराफात ने अपने भाषण का अंत 2 यादगार वाक्यों से किया था। मैं यहाँ जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूँ। मेरे हाथ से इस जैतून की शाख को गिरने मत दीजिए। इसको अगले दिन दुनिया के लगभग हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी थी।
मैं यहाँ जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूँ। मेरे हाथ से जैतून की शाख गिरने मत दीजिए।
इस भाषण के 9 दिनों के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने अपना प्रस्ताव नंबर 3237 पारित कर पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। अराफात दाढ़ी नहीं बनाते थे, उनकी शक्ल ऐसी दिखती थी जैसे उन्हें तुरंत नहाने की जरूरत हो। अराफात की जीवनी लिखने वाले एलन हार्ट लिखते हैं,
अराफात नाटे कद के शख्स थे, करीब 5 फीट 4 इंच लंबे या शायद इससे भी कम। अराफात चाहे जहां भी हो या कुछ भी कर रहे हो, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। उनके मुख्य राजनीतिक सलाहकार हनी हसन बताते हैं कि किसी जगह पर बैठने से पहले अराफात हर उस कोण का अध्ययन करते थे जहां से उन पर गोली चलाई जा सकती हो। हम बातचीत में खोए होते थे कि अराफात अचानक हमें रोककर अपने बैठने की जगह बदल लेते थे। हमने उनसे कभी इसका कारण नहीं पूछा। उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना गुप्त रखा जाता था कि उनके नज़दीकी लोगों को भी पता नहीं होता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। फरवरी 1973 में इसराइल ने लीबिया का एक यात्री विमान मार गिराया था, जिसमें विमान में सवार सभी 100 यात्री मारे गए थे। अराफात ने मुझसे कहा था कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बाद में पता चले कि इसराइल ने इस उम्मीद में विमान गिरा दिया था कि उस पर मैं या हमारे दूसरे साथी सवार थे।
भारत के पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मध्य पूर्व दूत चिन्मय गरे खान को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था।
अराफात से मेरी बहुत दफे मुलाकात हुई, सैकड़ों बार कह सकते हैं, क्योंकि मैं गाजा में पोस्टेड था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। वैसे बड़े चार्मिंग थे, चार्मिंग हो सकते थे जब वो चाहते थे, और उनकी सबल थी, वो दाढ़ी बाढ़ी तो थी उनकी, और हमेशा उनको वो फौजी लिबास में वो ड्रेस करते थे अपने आप को, पिस्तौल यहाँ लगा के और कैफिये बांध के सर पे। एक तरह से सिंपल आदमी थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन जहाँ तक कि पैलेस्टाइन इशू का मुद्दा था और इसराइल के साथ रिलेशन की जो बातचीत थी, उसमें वो बड़े माहिर थे और बड़े सस्पिशियस नेचर के थे। उन्होंने शादी भी करी, पहले तो कहते थे कि मेरी शादी तो पैलेस्टाइन से है, मैं किसी से शादी ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने शादी करी सुहा अराफात से। सुहा अराफात क्रिश्चियन थी और अराफात तो क्या सुन्नी मुस्लिम थे। कहते हैं कि सुहा अराफात को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम में थे उनके साथ, तो अराफात ने मंजूरी किया कि चलो भी शादी कर ले। उनकी एक बच्ची थी, अब तो खैर बहुत बड़ी हो गई होगी। तो वो गाजा में रहते थे, एक छोटे से घर में, मॉडेस्ट हाउस था, एक 2 फ्लोर्स का, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी पत्नी रहती थी अपने बच्चे के साथ।
अराफात हमेशा सैनिक कपड़ों में ही दिखाई देते थे, उनके जूते ब्रिटिश सैनिक अफसरों की तरह हमेशा चमकते रहते थे। यासिर अराफात की एक और जीवनी लिखने वाले बैरी रूबिन और जूडिथ कॉल्प रूबिन लिखते हैं,
अराफात सूट और टाई इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि ये पश्चिम की पोशाक थी और दूसरे महंगे कपड़ों से अय्याशी का आभास होता था, जिसका अंतर्निहित अर्थ था भ्रष्टाचार। उनकी अधकचरी दाढ़ी देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक गरीब फलस्तीनी किसान है। उनकी ये वेशभूषा उन्हें लड़ाई के मैदान में एक सैनिक के रूप में भी दिखाती थी, जिसके पास निजी ठाट बाट के लिए समय नहीं था। खुमैनी, हाफिज असद, सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन सब देखने में अच्छे दिखते थे, जिनको किसी हॉलीवुड थ्रिलर में सुपर विलेन के तौर पर दिखाया जा सकता था, जो पूरी दुनिया को जीतने पर आमादा थे। अराफात अपने कपड़ों और हाव भाव से इसके ठीक विपरीत दिखाई देते थे और दूसरों को ये गलत फहमी हो सकती थी कि उनको आसानी से मात दी जा सकती है।
अराफात 2 पारियों में सोया करते थे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक, इसलिए आधी रात के समय वो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहा करते थे।
जब वो उनसे अपॉइंटमेंट मांगे या मिलने को कहे तो कभी मना तो करते ही नहीं थे, और हमेशा रात को 11-12 बजे ही मिलते थे। और जहाँ मैं गाजा में रहता था वो उनकी ऑफिस के बहुत पास था, तो कभी कभी तो मैं पैदल भी जा सकता था, और रात को ही वो सबसे ज़्यादा अलर्ट भी होते थे और हमेशा नीचे आते थे अपनी गाड़ी तक हमको छोड़ने के लिए।
अराफात हमेशा अपनी कबर में पिस्टल लटकाकर चलते थे। जब वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने गए तो उनसे कहा गया कि सभागार में हथियार ले जाने पर मना ही है। समझौता इस बात पर हुआ कि वो अपनी खाकी वर्दी पर पिस्टल का हॉलस्टर तो लगाए रखेंगे, लेकिन उसमें पिस्टल नहीं होगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था।
कैरो में एक बार जब कई मुलाकातों के बाद वो गले लगते थे, उनका भी फिदेल कास्ट्रो जैसा एक मशहूर बेर हग होता था, तो वो गले मिले तो उनके जो कमर पे जो बांधी हुई पिस्तौल जो है, उस पिस्तौल को उठाने को बड़ा आसान मौका मेरे हाथ में था। तो मैंने बोला, अगर यही पिस्तौल मैं उठा के अगर आपके जान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता तो आप इतने मतलब विजिलेंट क्यों नहीं हो कि ये काम हो सकता है, कोई कर सकता है। तब उसने बोला, यार सुनो मैं एक राज बता दूँ आपको। बोला क्या है? कहते हैं पिस्तौल में कोई गोली नहीं है। तो मैं बोला, फिर क्यों ले चलते हो साथ में? कि क्योंकि मेरे पास पिस्तौल है, उसको देख के कई सारे लोग जो गोली चलाना चाहते हैं वो भी थोड़ा झिझक जाते हैं। अब ये बात, अब वो नहीं है तो बोल सकते हैं, वरना ये राज जब वो जिंदा रहते थे खोलना बड़ा मुश्किल था।
मशहूर पत्रकार श्याम भाटिया को यासिर अराफात से कई बार इंटरव्यू करने का अवसर मिला था। एक बार इंटरव्यू के दौरान वो उनसे नाराज हो गए थे।
यासिर अराफात को मिलना उन दिनों में बहुत बहुत मुश्किल था। एक बार बहुत मुश्किल से मुझे अल्जीरिया में गया था तो किसी दोस्त ने कहा कि मैं मिलवा दूंगा और 10 मिनट की इंटरव्यू हुई। यासिर अराफात के दफ्तर में से किसी सेक्रेटरी आदमी के साथ मेरी एक किस्म की दोस्ती हो गई। तो उसने कहा, देखो अगर तुम अराफात से मिलना चाहते हो तो उनको शहद बहुत पसंद है, अगली बार अगर कोई मौका मिला तो उनको शहद लेकर ले आओ। तो मैं तूनिस गया और इंटरव्यू हुई उनके साथ। उसके अखीर में मैंने कहा, अराफात जी सुना कि आपकी शादी हुई है, आपकी बीबी के साथ मुलाकात हो सकती है? एकदम नाराज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुसलमानों में बीबी की बातें ऐसे कोई बाहर से करे तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल है? क्या बेवकूफी कर रहे हो? मैं भी डर पड़ा। तो मैंने कहा, सॉरी अराफात जी, मैं तो बस अखबार के लिए पूछ रहा था, निकलो यहाँ से, इस कमरे से निकलो। तो जाते जाते मैंने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ पर आपके लिए मैं एक बोतल शहद की छोड़ा हूँ, वो मैं छोड़ मेज पर छोड़ आई। और वापस मैं होटल गया तो दरवाजे पर खटखट हुआ, तो मैंने दरवाजा खोला और अराफात के दो फौजी खड़े थे। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ, अब इंटरव्यू होगी। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ चलोगे। और मुझे बस पकड़ के ले गए, गाड़ी में डाला। जैसे मैं निकला तो मैं देखा अराफात सामने खड़ा हुआ और उनके साथ एक बहुत खूबसूरत औरत। तो मैंने कहा, अराफात जी आप तो नाराज हो गए थे। अरे वो तो नकली गुस्सा था, ये मेरी बीबी है, इनसे मिलिए और मेरे साथ हम तीनों लंच खाएंगे। लंच हुआ उनके साथ, 2-3 घंटे उनके साथ बैठे रहे।
बाद में अराफात दंपत्ति और श्याम भाटिया की नजदीकी इतनी बढ़ गई कि एक बार अराफात की पत्नी ने अपनी 1.5 साल की बेटी जहवा की बेबी सिटिंग की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
मैं उन दिनों अलकुत्स जरूसलम में था, मेरा दफ्तर वहाँ था। तो जरूसलम से गाजा को 1.5 घंटा का रास्ता है, तो मुझे बुलाते रहते थे, मैं जाता था आता था। एक दिन मैं गया तो सुहा अराफात उनकी जो बीवी थी उन्होंने कहा, देखो तुम्हें बुलाया तो गया है इंटरव्यू लेने के लिए पर हमें बाहर जाना है और हमारी जो बेटी है जहवा उन दिनों में मेरे ख्याल 1.5 साल की थी, कोई बेबी सिटर है नहीं तो तुम इसका ख्याल करो। तो मैंने कहा, सुहाजी मैं क्या करूं? बस ठीक है, तुम प्रेम में लेकर आगे पीछे घूमो उनके साथ। और मैं सूट टाई पहनी हुई है और अराफात और मिसेज अराफात की बेटी जहवा प्रेम में बैठी हुई है और मैं जर्नलिस्ट उनको आगे पीछे हिला रहा हूं और मेरे पीछे फलस्तीनी फौजी बंदूक लेकर मेरे पीछे, जैसे मैं आगे जाता था वो मेरे पीछे पीछे, और मेरे हाथ में अराफात की बेटी की जिम्मेवारी। ये 1/2 घंटे की बात हुई। आगे पीछे जब वो रोती थी तो मैं कहता, चुप चुप को ना रो जावा, ठीक है डैडी आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगे। और उसके बाद घंटे के बाद वो आगे और मेरी इंटरव्यू हो गई।
यासिर अराफात अपनी हवाई यात्रा को बहुत गुप्त रखते थे और मेजबान देश को पहले से नहीं बताया जाता था कि वो वहां आने वाले हैं। उनका अक्सर भारत आना होता था। वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे।
जब भी अराफात यहाँ आते थे पहले से नोटिस हम लोगों को मिलती नहीं थी। वो तो जब मिड एयर होते थे, जब पहुँचने वाले होते थे 1-2 घंटे में, तभी वो खबर आती थी कि मैं आ रहा हूँ। वो ऐसे ही आते थे सिक्योरिटी वजह से, सिक्योरिटी हमेशा वो डरते थे। तो ऐसे उनके संबंध थे कि जब भी उन्होंने सोचा कि इंदिरा से मिलना है, माई सिस्टर करके कहते थे।
1983 में भारत में जब गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ तो वो इस बात पर नाराज हो गए कि उनसे पहले जॉर्डन के शाह को भाषण देने का मौका दिया गया। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह उस सम्मेलन के महासचिव थे।
7वां नॉलनाय समिट मार्च 1983 में हुआ था और उसके चेयरमैन थे फिदेल कास्त्रो सुबह के सेशन तक। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी थी, तो सुबह का सेशन खत्म हो जाने के बाद जो मेरे डिप्टी थे सत्ती लामा, वो आए के साहब हमें तो बड़ी आफत पड़ गई है कि यासर अराफात बहुत नाराज है और अभी अपने जहाज में जाने को दिया है वापस। मैंने फिर इंदिरा जी को टेलीफोन किया, मैंने साहब ये बड़ी आफत हो रही है, आप यहाँ आ जाइए और मैं कास्त्रो साहब को भी ले आइए विज्ञान भवन। उन्होंने ये कहा कि साहब उस सुबह के सेशन में मुझे जॉर्डन के किंग के बाद बोलने को कहा और मेरी इंसल्ट हो गई है, मुझे उनके पहले बोलना चाहिए था। कास्त्रो साहब आए और उन्होंने टेलीफोन किया यासर अराफात को, कहा आ जाइए यहाँ विज्ञान भवन में, तो वो आ गए। तो कास्त्रो साहब ने पूछा कि बताओ इंदिरा गांधी तुम्हारी दोस्त है कि नहीं है? उन्होंने कहा मिस्टर कास्त्रो क्या कह रहे हैं आप, मेरी दोस्त नहीं बड़ी बहन है। तो उन्होंने कहा फिर बड़ी बहन है तो यू बिहेव लाइक यंगर ब्रदर एंड कम टू द आफ्टरनून सेशन। तो आ गए।
राजीव गांधी के साथ भी उनकी बहुत घनिष्ठता थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने भारत में राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने की पेशकश की थी।
राजीव गांधी बड़े इमोशनल आदमी थे और इंदिरा गांधी इतनी इमोशनल नहीं थी, वो रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक थे क्योंकि उनको इतना सारा तजुर्बा हो चुका था। राजीव गांधी नए नए थे कंपैरेटिवली, जब भी मिलते थे तो बहुत यानी गले लग के और बहुत अच्छी तरह से उनका आदर करते थे। अराफात ने खुद मुझे कहा कि मैंने मैसेज भेजा है कि मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि राजीव गांधी उससे नाखुश नहीं थे क्योंकि भाई पॉलिटिशियंस के लिए जहाँ भी गुप्ती मदद मिल जाए वो वेलकम है, लेकिन अराफात का ये क्लेम तो था कि मैंने कहा है कि भाई मैं मदद करने कैंपेन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैंपेन किया तो नहीं, करने तो नहीं दिया, लेकिन वो ठीक भी नहीं लगता कोई फॉरेन लीडर आके करे। लेकिन अगर अराफात ने एक अपने फॉलोअर्स को मैसेज भी भेज दिया हो कि भी राजीव गांधी को सपोर्ट करना, तो आई थिंक राजीव गांधी उससे खुश रहे होंगे।
राजीव गांधी की तरह बेनजीर भुट्टो से भी यासिर अराफात की बहुत नजदीकी थी। एक बार दोनों के बीच एक मजेदार वाकया हुआ। जब बेनजीर प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अरशद समी खां से कहा कि ये ख्याल रखिएगा कि मैं किसी पुरुष नेता से हाथ नहीं मिलाती। इस बीच अराफात का कराची आना हुआ और बेनजीर उन्हें रिसीव करने हवाई अड्डे गई। अरशद समी खां अपनी आत्मकथा 3 Presidents and an Aide में लिखते हैं,
चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है कि वो विमान के अंदर जाकर विदेशी मेहमान का स्वागत करे। मैं अराफात के विमान की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि बेनजीर ने मुझे बुलाकर मेरे कान में कहा, अराफात को याद दिलाना मत भूलना कि मैं पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती। जैसे ही अराफात मिले मैंने उनसे कहा, एक्सलेंसी बेनजीर भुट्टो आपका स्वागत करने के लिए नीचे खड़ी हैं, आपको मैं बस एक बात याद दिला दूं कि वो पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती। अराफात ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे कई बार बताया गया है, बहरहाल याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जैसे ही अराफात नीचे उतरे मैं देखता क्या हूं कि उन्होंने बेनजीर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बेनजीर ने घूर कर मेरी तरफ देखा और झिझकते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। अभी हम लोग चले ही थे कि उन्होंने मुझसे फुसफुसाकर उर्दू में कहा ताकि अराफात समझ न पाए, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता अराफात ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, शुक्र मनाइए मोहतरमा कि मैंने आपका चुंबन नहीं लिया। ये एक अरबी रस्म है कि जो भी मेरा स्वागत करने आता है मैं उसके गाल चूमता हूँ, एक बार नहीं दो बार दोनों गालों पर। हम तीनों ने ठहाका लगाया और सलामी मंच की तरफ बढ़ गए।
रिहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब वक्त है विश्व समाचारों का।
BBC समाचार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नज़दीक सौरा में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गए। हांगकांग में आज हजारों की संख्या में गणतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। यहां बीते 2 महीनों से अधिक वक्त से विवादित प्रत्यर्पण बिल का विरोध किया जा रहा है। فرانس اور آئرلینڈ سمیت یورپی دیشوں کے کئی نیتاؤں نے کہا ہے کہ وہ یورپی سنگھ کے ساتھ ہونے والے ایک اہم ویاپار سمجھوتے کا انومودن تب تک نہیں کریں گے جب تک برازیل امیزن کے جنگلوں میں لگی آگ پر قابو نہیں پا لیتا. ادھر بولسونیرو نے کہا ہے کہ امیزن کے جنگلوں میں لگی آگ سے نپٹنے کے لیے وہ سینا بھیجنے والے ہیں. دنیا کا پہلا تیرتا پرمانو اسٹیشن آج آرکٹک میں موجود روس کے بندرگاہ مرماسک سے چکوٹ کا پرانت کے لیے روانہ ہوا. چین نے کہا ہے کہ وہ قریب 75 ارب مولی کے 5,000 سے ادھک امریکی وستوؤں کے آیات پر اترت شلک لگائے گا. بی بی سی سماچار.
دن بھر میں آج اتنا ہی. کارکرم کا سمپادن کیا واتسلے رائے نے اور تکنیکی پکش سنبھالا کپل دیو نے. وشو سماچار سنا رہی تھی مانسی داش. ریڈیو پر اگلی ملاقات ہوگی صبح 6:30 بجے کارکرم نمسکار بھارت میں. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے آئیں ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.